लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है
फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, मानव के रूप में हमें जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने जीवन देने वाले ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करें। संहिता का सार अर्थात धर्म ग्रंथ की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा यही है, जिसे हम प्राचीन विधान के विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 के पद 5 में पाते हैं, जिसे मूसा ने इसराइली प्रजा को सुनाया था। संहिता की इस आज्ञा की महत्वपूर्णता हमारे लिए इस बात से झलकती है कि इसराइली जनता को अपने हृदय में इसे अंकित करते हुए इसे अपने संतानों को सिखलाने के लिए हर समय इसकी चर्चा करने का आह्वान किया गया। इसे हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांध कर रखने, अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख कर रखने को कहा गया। श्रोताओ, जब हम संहिता की आज्ञा को अपने में धारण करते और उसके अनुरूप जीवन यापन करते, तो हम अपने को उस प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के योग्य बनाते हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और हमें चुना है। हमारे लिए प्रतिज्ञात देश स्वर्ग का वह अनंत निवास है, जिसके हकदार हम स्वयं को अपने कार्यों, व्यवहार, आचरणों अर्थात संहिता के नियमों का अनुपालन करते हुए अपने लिए चुनते हैं। वर्ष के 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए शिष्यों के भेजे जाने का वृतांत प्रस्तुत करता है। यीशु अपने शिष्यों को निर्देश देते और उन्हें अपनी शिक्षा को प्रसारित करने हेतु उन स्थानों में भेजते हैं जहां वे स्वयं जाने वाले थे। आइए हम सुसमाचार पाठ में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन की थाह लें। हम स्वयं से पूछें कि क्या हम अपने भेजे जाने के मर्म को समझते हैं? क्या हमने अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को सही अर्थ में ग्रहण किया है? क्या हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा का अनुपालन करते और उसे अपने जीवन के भले कार्यों द्वारा साक्ष्य स्वरूप दूसरों के लिए प्रस्तुत करते हैं?
इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली, न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर के राज्य को प्रसारित करने हेतु एक सुयोग्य माध्यम बनने में मदद करे, जिससे हम एक निष्ठावान मजदूर की भांति ईश्वर की दाखबारी में कार्य करते हुए उन फसलों को ईश्वर के भंडार में जमा कर सकें, जिसके लिए उन्होंने हमें जीवन का एक सुंदर दान दिया है। श्रोताओं, इसायस नबी के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए आनंद की विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। नबी इसायस हमें यरूशलेम के संग आनंदित होने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर अपने लोगों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। श्रोताओं, यह हमारे लिए इस बात को प्रकट करता है कि ईश्वर अपने लोगों की सुधि लेते हैं। अपने प्रेम के कारण वे हमारे बीच आते और हमारे जीवन में व्याप्त दुख तकलीफों से हमें निजात दिलाते हुए हमें सांत्वना प्रदान करते हैं। नबी इसायस मानव के प्रति ईश्वर के प्रेम को एक माता के प्रेम से तुलना करते हुए कहते हैं कि वे हमें एक माता की भांति अपनी गोद में उठाते हुए दुलार करेंगे और अपनी सांत्वना से भर देंगे। श्रोताओं, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का प्रेम हमारे लिए क्रूस के काठ में पूर्ण रूपेण व्यक्त किया गया है, जहां हम उन्हें सारी मानवता के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए बलि अर्पित होता पाते हैं। संत पौलुस सिर्फ यीशु ख्रिस्त के उसी क्रूस पर गौरव करते हैं। वे क्रूस पर गौरव इसलिए करते हैं क्योंकि मुक्तिदाता ने अपने को सारी मानवता के खातिर क्रूस पर ठोके जाने दिया। संत पौलुस अपने मुक्तिदाता का अनुसरण करने के लिए दुनिया की सारी चीजों का परित्याग कर देते हैं। यीशु ख्रिस्त में मिला आनंद का एक अमूल्य दान, जिसके आगे दुनिया की बाकी सारी चीजें उनके लिए कूड़ा करकट लगती हैं, और उनके क्रूस में मिलने वाला आनंद उन्हें नया जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, यीशु इसी नए जीवन को देने हेतु अपने अन्य 72 शिष्यों को निर्देश देती और विभिन्न स्थानों में भेजते हैं, जहां वे स्वयं जाने वाले थे। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के स्वामी से विनय करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु के इन वचनों में हम मानव के लिए उनकी चिंता और प्रेम की अभिव्यक्ति को पाते हैं। वे मजदूरों के रूप में भेज रहे शिष्यों को अपने सामर्थ्य से भर देते हैं, जिससे वे अपने स्वामी के कार्यों को पूरा कर सकें। श्रोताओं, स्वामी के द्वारा शिष्यों को दी गई प्रेरिताई में हम दो खास बातों को पाते हैं। पहला, उनका अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना। दरिद्रता में उनका यह भेजा जाना ईश्वर पर पूर्ण रूपेण उनकी आत्मनिर्भरता और विश्वास में सदैव स्वामी के संग संयुक्त रहने की बात व्यक्त करता है। वे अपने शिष्यों को शांति प्रसारित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जो दुनिया में उनके आने और पिता के राज्य स्थापना की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। श्रोताओं, मानव के रूप में ईश्वर ने हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां हम विभिन्न स्थानों और विभिन्न रूपों में उनके कार्यों को पूरा करते हुए ईश्वरीय राज्य की घोषणा करते हैं। उन्होंने हमें अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया है, जिसके फलस्वरूप हम असहज और कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करने में सक्षम होते हैं। शिष्यगण प्रेरिताई से लौटकर यीशु ख्रिस्त को अपने कार्यों का विवरण देते और यीशु उन्हें कहते हैं कि तुम अपने उन कार्यों के लिए आनंदित ना हो जिन्हें तुमने पूरा किया है, बल्कि इस बात के लिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। श्रोताओं, इस दुनिया में हमारा आना और ईश्वरीय योजना के अनुरूप उनके कार्यों को पूरा करना हमें स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने की बात स्पष्ट करता है। हमें जीवन का दान इसलिए दिया गया है कि हम इस धरती पर नेक कार्य करते हुए अपने मरण उपरांत ईश्वरीय अनंत आनंद के उत्तराधिकारी बन सकें। आइए हम ईश्वर से कृपा की मांग करें कि वे हमें अपने जीवन के इस सार को समझने में मदद करें, जिससे हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीने के योग्य बन सकें।
जिसने दिया ये जीवन है उसका,
जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका।
नमन उसका, जीवन जिसने दिया ये जीवन है करे हम जय जय का, जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका, जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जब कभी हम यीशु के लिए अपना हृदय खोलते हैं, ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इसी वाक्य के साथ संत पापा फ्रांसिस ने 2 जुलाई के ट्वीट संदेश में विश्वासियों को ईश्वर के लिए अपना हृदय खोलने हेतु प्रोत्साहित किया। संत पापा फ्रांसिस ने कोंगो एवं दक्षिण सूडान के लोगों को अपना संदेश भेजा है, जहां वे 2-7 जुलाई को प्रेरितिक यात्रा करने वाले थे, किंतु अपने अस्वस्थता के कारण उसे स्थगित कर दिया है। 2 जुलाई को एक वीडियो संदेश प्रकाशित कर संत पापा ने कोंगो एवं दक्षिण सूडान के लोगों की याद की तथा प्रेरितिक यात्रा स्थगित किए जाने के लिए खेद प्रकट करते हुए उनसे जल्द ही मुलाकात करने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शांति एवं मेल मिलाप के एक तीर्थयात्री के रूप में आज आपकी भूमि गया होता। प्रभु जानते हैं कि अत्यंत वांछित एवं प्रतीक्षित यात्रा को जबरदस्त स्थगित कर मेरा पछतावा कितना अधिक है, किंतु आइए हम भरोसा ना खोएं और उम्मीद बनाए रखें कि जल्द ही मुलाकात करना संभव होगा। संत पापा ने बतलाया कि वे इन दिनों कोंगो एवं दक्षिण सूडान के लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कोंगो के लोगों से कहा, जो पीड़ा आप लंबे समय से सह रहे हैं, उसे अपने साथ अपनी प्रार्थना में अर्पित कर रहा हूं। मैं कोंगो की याद कर रहा हूं, उसके शोषण, हिंसा और असुरक्षा को, खासकर पूर्वी देश में जहां सशस्त्र संघर्ष जारी है, जिससे असंख्या एवं दर्दनाक पीड़ा उत्पन्न हो रहे हैं। दक्षिण सूडान पर चिंता व्यक्त करते हुए संत पापा ने कहा, मैं दक्षिण सूडान के बारे सोचता हूँ, उसकी जनता के द्वारा शांति की पुकार को, जो हिंसा एवं गरीबी से उब चुकी है और राष्ट्रीय मेल मिलाप की ठोस प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। संत पापा ने कोंगो एवं दक्षिण सूडान के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करते हुए अपना स्नेह प्रकट किया है और कहा है कि वे अपनी आशा ना खोएं। निकारागुआ में कातिक कलीसिया के खिलाफ एक नई कार्रवाई के रूप में राष्ट्रपति दानियल ओर्तेगा की अगुवाई में सैंडिनिस्ता सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित संघ को बंद किए जाने की घोषणा की है। बंद किए जाने की घोषणा उन 100 अन्य गैर सरकारी संगठनों के लिए भी की गई है जो देश में सक्रिय कातिक संगठन है। निकारागुआ के अधिकारियों का कहना है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का संघ अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल है और खासकर कानून 977 के साथ आतंकवाद के वित्त पोषण हेतु काले धन को वैध बनाने एवं सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए वित्त पोषण में शामिल है। इसके अतिरिक्त अंतरिम मंत्रालय ने कहा है कि मिशनरियों को मंत्रालय की ओर से परिवार को बच्चों के विकास हेतु नर्सरी केंद्र, बालिकाओं के आवास एवं बुजुर्गों के आश्रम के रूप में संचालित करने की मान्यता नहीं दी गई है और न ही उन्हें शिक्षा मंत्रालय से विद्यार्थियों को उपचारी शिक्षा देने की अनुमति दी गई है तथा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ अंतरिम मंत्रालय को रिपोर्ट किए गए उनके वित्तीय विवरण भी सही नहीं है। केंद्रों को बंद किए जाने का आदेश कातली कलीसिया एवं ओर्तेगा सरकार के बीच बड़ी तनाव की पृष्ठभूमि पर आई है जो मध्य अमेरिकी देश में 15 वर्षों से राज कर रहे हैं। दोनों के बीच संबंध में दरार 2018 से ही है।
संत पापा फ्रांसिस अपनी अधिकांश गतिविधियों से जुलाई में सामान्य अवकाश लेंगे। इसकी पुष्टि शुक्रवार को एक बयान में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने दी। जैसा कि प्रथागत है, संत पापा फ्रांसिस इस महीने अपने अधिकांश गतिविधियों, सामान्य आमदर्शन समारोहों और औपचारिक मुलाकातों को निलंबित करेंगे, लेकिन वे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ और उसके पूर्व संदेश देना जारी रखेंगे। संत पापा 24 से 30 जुलाई तक कनाडा की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार 24 जुलाई को संत पापा रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से कनाडा के लिए प्रस्थान करेंगे। एडमोंटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में संत पापा का आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। सोमवार 25 जुलाई को संत पापा का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम एडमोंटन के लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित मास्कवासिस शहर में मेटिस और इनुइट आदिवासी लोगों के साथ एक बैठक के साथ शुरू होगा। मंगलवार 26 जुलाई को वे एडमोंटन के कॉमनवेल्थ स्टेडियम में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद वे लैक स्टे एनी की तीर्थ यात्रा करेंगे और वहां प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। बुधवार 27 जुलाई को संत पापा क्यूबेक सिटी के लिए प्रस्थान करेंगे। संत पापा का आधिकारिक स्वागत के बाद वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और वहीं नागर अधिकारियों, आदिवासी लोगों के प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। गुरुवार 28 जुलाई को संत पापा राष्ट्रीय तीर्थालय में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। वे नोटर डैम महागिरजाघर में धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, डीकनों और गुरुकुल के छात्रों के साथ संध्या प्रार्थना करेंगे। शुक्रवार 29 जुलाई को संत पापा क्यूबेक के महाधर्माध्यक्ष के निवास पर अपने येसु समाजी भाइयों के साथ निजी बैठक करेंगे। उसके बाद उसी स्थान पर आदिवासी लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे और उसी दिन संत पापा इकालुइट के लिए उड़ान भरेंगे और वहां इकालुइट के प्राथमिक विद्यालय में पूर्व आवासीय विद्यालयों के छात्रों के साथ निजी तौर पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद संत पापा फ्रांसिस शुक्रवार दोपहर इकालुइट हवाई अड्डे से रोम के लिए प्रस्थान करेंगे और शनिवार 30 जुलाई सुबह रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उधर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन संत पापा फ्रांसिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए शुक्रवार को अफ्रीका के लिए रवाना हुए। जुलाई की शुरुआत में पहले से ही निर्धारित प्रेरितिक यात्रा करने में संत पापा फ्रांसिस असमर्थ हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मैं वास्तव में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण सूडान दोनों देशों में जाने हेतु सक्षम होने और उन लोगों के लिए संत पापा के स्नेह को लाने के लिए वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने पेरिस में चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे से यह बात कही। वे 1 से 8 जुलाई की यात्रा के पहले चरण के लिए राजधानी किशांसा के लिए एक विमान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।